اگلا جملہ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. قال انی ذاہب الى ربی سیحدین. اب اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یہ زندگی کا دورہ ہوتا ہے, بلکہ میں تو کہوں گی راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ تو زندگی میں انسان کے سامنے بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے نا, ادھر یا ادھر, رائٹ اور لیفٹ. لیکن کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پہ لے آتی ہے کہ وہاں تین چار راستے کھلے ہوتے ہیں. رائٹ بھی ہے, لیفٹ بھی ہے, ساؤتھ بھی ہے, نارتھ بھی ہے, ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی ہے, پگڈنڈیاں بھی کھلی ہوئی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. اس وقت صرف یہی کہیے کہ انی ذاہب الى رب, میں اپنے رب کے بھروسے پہ ہوں, جدھر لے جائے گا لے جاؤں گی کیونکہ استخارہ کر لیا ہے, جو کہے گا کر لوں گی کیونکہ استخارہ کر لیا, اس پہ نظریں ڈال دی ہیں, اس سے مشورہ کر لیا, نبی کے طریقے کو سامنے رکھ لیا. سیاحدین, مجھے یہاں حضرت موسیٰ بھی یاد آ رہے ہیں جب مصر سے مدین جا رہے تھے, اس وقت بھی تو یہی تھا نا کہ اللہ جدھر پھر تو لے جا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا یہ عقل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ عقل نہیں استعمال کر رہے ہیں, یہ رب کے ہاتھ میں سب کچھ سپرد کر رہے ہیں. اور یہ ہے وہ موڑ جہاں ابراہیم نے ہجرت کی تھی. اور اللہ کا قانون سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ نبی یا رسول مزید اس قوم میں نہیں رہ سکتا. آپ کی قوم نے تو آپ کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی صرف قتل کی, بلکہ بالفعل آپ کو آگ میں ڈال دیا. اللہ نے آپ کو معجزانہ طور پر بچا لیا. یہود نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. تو ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا؟ آپ کے گھر کا گھراؤ کر دیا. اللہ نے نبی کو وہاں سے ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال, اور اس طرح سے وہ ان کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے نکل گئے. ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. لیکن آپ ابراہیم نے کہا کہ میں تم میں نہیں رہوں گا. اور آپ ذرا نوٹ تو کریں, امیجن کریں, ساری بستی جمع, اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے سب کو جمع کر لیا تھا, اور دیکھو ابراہیم کے جلنے کا منظر, تاکہ آج کے بعد کوئی اللہ والا نہ بن سکے. دیکھو ہم ان مسلمانوں کا کیا انجام کرتے ہیں تاکہ کل کوئی مسلمان نہ ہو. سب جمع, اور ابراہیم اس آگ میں مسکرا رہے ہیں. دو تین دن تک رہے, چار دن رہے, جتنے بھی رہے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہتے تھے کہ میری زندگی کے بہترین دن تھے, کیونکہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا تھا. اور جو آگ اللہ کے کاموں کے, اللہ کی ذمہ داریوں کے راستے میں جلتی ہے, اس میں تو بہت سکون ہے. لوگوں کو زندگی میں وہ خوشی اور سکون نہیں ملتی دنیا کی نعمتوں میں, نرم گدوں پہ, بچوں میں, اولادوں میں, مال میں, جو آپ کو اللہ کے راستے کی ہجرتوں میں ملتی ہے. ایک پھر ہجرت ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے, ایک بار پھر گھر دینا پڑے تو کیا بڑی بات ہے, ایک دفعہ پھر نہیں 10 دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری جان بھی لے لے تو کیا بڑی بات ہے. کیوں شہید کہتا ہے اللہ زندگی میں پھر بھیج تاکہ پھر جان لوں, پھر جان لوں, پھر جانو, اور میں اس لذت کو پاؤں. لوگ کہتے ہیں بندہ دے رہا ہے, اللہ کہتے ہیں اس کو مل رہا ہے. اور یاد رکھیے ہر ہجرت کے بعد ترقی ملتی ہے. آگے آپ پڑھیں گے ایک جگہ آئے گا حضرت ابراہیم کی ہجرت کا تذکرہ, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسماعیل اور اسحاق دے دی. بندہ اللہ کو ایک ہاتھ سے دیتا ہے, اللہ اس کو دونوں سے واپس لوٹاتا ہے. یہ تو ہم نہ شکرے اور تھوڑ دلے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ ہوگا کیسے, اٹس ویری ہارڈ, عقل میں نہیں آتا. ہو ذرا بیٹھو, لوگوں سے مشورہ کریں, کبھی ایسا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سمندر کے اندر جاتے اگر عقل سے پوچھتے, اور اس دور کے کچھ فلسفیوں کو بٹھا کے پوچھتے, یہ پانی جم تو گیا ہے تو میں گزر جاؤں ادھر سے؟ کیونکہ 3-4 میل تھا, پانی میں جانا تھوڑی بات ہے, کشتی میں بیٹھ کے جائیں تو ڈر لگتا ہے. اگر ٹنل میں سے بھی, اگر آپ یورو ٹنل میں بھی نکلتے ہیں اور خوف آتا ہے چاروں طرف پانی ہے تو خوف آتا ہے. تو وہ تو تن تنخواہ بغیر سارے کے چل گئے. عقل پرستوں نے حضرت موسیٰ کو کیا مشورہ دینا تھا؟ نہ 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 نہ, پانی ہے, اس کا کیا بھروسہ, ابھی میلٹ ہو گیا, ڈوب جاؤ گے, پڑے رہتے. لکھ کے دیکھ لیں, موسیٰ پانی کے کنارے کھڑے کر کے آزمائے گئے, ابراہیم آگ کے کنارے کھڑے آزمائے گئے, اور حضرت نوح کو اللہ نے کس طرح اوپر نیچے کے طوفانوں میں ڈالا. ہم تو بھی چھوٹی سی مشکل میں پڑتے ہیں تو چیخیں نکال کے پیچھے ہو جاتے ہیں, سوری سوری اللہ میں غلط لائن پہ کھڑی ہو گئی تھی, تو میرا نام پیچھے ہی رکھنا. ابھی ہمیں ان آیتوں نے کیا دینا ہے سوائے اس کے کہ یہ آیتیں پوری ہو جائیں گی, قرآن پورا ہو جائے گا, ہم کر کے کچھ اچھی نمازیں پڑھ کے اپنی دنیا میں پھر لگ جائیں گے. کیا ہم اس بات کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو ہے نا سیاح دین, میرے اپنے نوٹس میں یہ آیت لکھی ہوئی. ایک ٹرپ ایسا کیا تھا آج سے 1-2 سال پہلے, کچھ نہیں پتا تھا منزل کیا, تو میں نے اپنے ہر ٹرپ کو ایک نام دیتی ہوں, اور اس پورے آج بھی جب کبھی اپنے نوٹس کھولتی ہوں تو وہ ٹرپ کھلتا ہے آگے, تو اس کا یہی رکھا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیاح دین, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونا. और ऐसे मरहले आते हैं जिंदगी में, जो करेगा ये यकीन अच्छा करेगा। अगर रिसोर्सेज को देखें, मींस को देखें, तो हो सकता है कि हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हाल में हो। इसलिए कभी अपने आप को और अपने रिसोर्सेज को बड़ा ना बनाया करें। कहाँ करें अल्लाह से, अल्लाह तूने इब्राहिम की आग ठंडी कर दी, मेरे लिए भी आसानियां कर। खुद ही अंदर से जवाब आएगा, पहले तू तो इब्राहिम जैसी बन, तू पहले दिल को सलामत तो कर। बात बात पे तो हमारे दिल खराब हो जाते हैं, दिल खट्टे तो हमारे हर वक्त ही रहते हैं, मजबूरियों की दुम तो हमारे साथ लगी हुई है। तो फिर अल्लाह ताला के फैसले तो ऐसे नहीं होते ना। आप देखिए, ये कितनी दफा आपने वाक्या सुना कि नबी सल्लम गए और सबकी आंखों में मट्टी पड़ गई। सुना है ना वाक्या, सीरत में भी पढ़ा होगा, नातों में भी सुना होगा, मिलादों में भी सुना होगा। होता कैसे है, मैं और आप मट्टी डाले तो डलती क्यों नहीं। बमा रमई तज रमई तो वाला कि नल्ला रमा, पढ़ चुके हैं पीछे कि अल्लाह के नबी, वो मट्टी आपने नहीं थी डाली वो बदर के मैदान में, वो हमने आंखों में लोगों की डाल दी थी, सबकी तलवारें छूटी, मैदान जंग का नक्शा बदल गया। तो अल्लाह हमें ईमान की बुलंदियां दे। ये वो मौका था कि अब कौम ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। क्या था, बर्दाश्त कर लेते और बुत बना लेते, कौन से बुत नहीं बनते। लेकिन असल में इब्राहिम के लिए आग जलाकर इन्होंने अल्लाह को मुकाबले पे रखा। अल्लाह ने कहा इब्राहिम छोड़ दो इनको, ये ना कदरे लोग हैं, पीछे कर दो। यहां से इब्राहिम निकले तो इराक, यानी इराक शहर था ना जहां थे, जहां से अब हिजरत की। इस वक्त इनको नहीं पता था कि इराक से किधर जाऊंगा, कहा मेरा रब जिधर ले जाए, जैसे मूसा ने कहा अल्लाह जिधर तू ले जाएगा। तो चुनाचे फिर इराक से फलस्तीन की तरफ हिजरत की। बहुत लंबा रास्ता काटा, इराक शाम और फलस्तीन के दरमियान उर्दन का मशरकी इलाका आता है, पूरा सहरा है, लखोदा कुछ साया नहीं, जिसको लोग कहते हैं कि अबूर करना नामुमकिन है, रास्ते है कोई नहीं, पानी है नहीं, जरा इधर उधर भटको बंदा मर जाता है। लेकिन अल्लाह ने इनको कैसे वहां रास्ते दिखाए, दरियाए फरात के साथ साथ सफर करते करते ऊपर की तरफ से शाम के जो शिमाली इलाका था ना बारान, वहां पहुंचे और वहां से फिर रास्ता लेकर नीचे फलस्तीन में आए। और आप मुझे बताइए कि इराक अच्छी जगह है या फलस्तीन, वो जगह जिसको अल्लाह ने कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसको अल्लाह कहता है बारकना हौलहू, वो अच्छी थी या इराक अच्छा था। अल्लाह ने क्या करना था इराक में रख के इनको, फितनों का गढ़। अल्लाह ने उनको निकाल कर अच्छी जगह दे दी, वो रोते रहे अपने नसीब को। तो अल्लाह वालों से मुकाबला करना बड़ी बात नहीं है, अपना नुकसान होता है। अब पहुंच गए, अकेले निकले थे, सफर में इनकी बीवी साथ थी, अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे, मायूस नहीं हुए, अल्लाह की कुदरत का इतना बड़ा नमूना देख चुके थे कि फौरन लबों पे दुआ आ गई कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक साले बेटा भी दे दे। जब इंसान की उम्र बढ़ती है ना तो फिर शायद उसको ज्यादा एहसास होता है इस बात का कि कोई हो जो चले तन्हाई बांटे, और अगर फरागत हो तो हर वक्त ही लोगों का ये गम रहेगा। उस वक्त इन्होंने तड़प के दुआ मांगी, अल्लाह पहले भी दे सकता था, लेकिन इतनी हिजरतें कैसे होनी थी। जब अल्लाह ने इब्राहिम का एक ठिकाना मुकर्रर कर दिया ना, अल्लाह ने कहा बेटे क्या जितने मर्जी लो, फिर एक नहीं बेटा, फिर बेटे से फिर बेटा और नस्लें, और याकूब से फिर 12 बेटों की नस्ल चला दी। बुढ़ापा 70-80 साल का बुढ़ा, आज हम कहें हाय इस उम्र में बुढ़ापे में औलाद मांगे, भाई जब अल्लाह ने देनी है ना तब देनी है, और वो दे सकता है। ऐसे लग रहे इधर उन्होंने मांगी और मांगा भी क्या, औलाद दे बेटा दे, नहीं सालेहीन दे, नेकों में हो, बेटी हो या बेटा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हो नेक, आंखों की ठंडक हो। फबशर ना हो भी गुलाम इन हलीम, तो हमने उसे बिशारत दी एक हलीम उत्तबा बेटे की। सुभान अल्लाह, कौन सा बेटा था ये, यहूद से पूछेंगे तो वो कहेंगे वो हजरत इसहाक थे, और अगर आप कुरान और सुन्नत से पूछेंगे तो वो हजरत इस्माइल थे। हलीम अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, बार बार कुरान पाक में आता है। कुछ सिफात अल्लाह की ऐसी हैं जो अल्लाह ताला बंदों के अंदर देखना चाहता है, लेकिन हिल्म अल्लाह की वो शान है जो इंसानों में ज्यादा आम नहीं है। लफ्ज हलीम अल्लाह के माँ सिवा के लिए कुरान पाक में सिर्फ 3 मरतबा आया, 2 मरतबा हजरत इब्राहिम के लिए सूरत तौबा आयत 114 और सूरत हूद आयत 75 में, और अब यहां 1 मरतबा इब्राहिम के बेटे इस्माइल के लिए आ गया। और यहां गुलाम इन हलीम कहा, जबकि सूरत हिजर की आयत 53 में इसहाक का जिक्र है जो दूसरा बेटा इसके बाद हुआ, 13 साल का गालिबन, उनमें भी फर्क है दोनों में। इसहाक के लिए सूरत हिजर आयत 53 में क्या आया था, याद है किसी को, गुलाम इन अलीम, वो इल्म वाला बेटा है। आप कह सकते हैं कि इनमें हिल्म ज्यादा था तो इस खाक में इल्म ज्यादा था। क्या अल्लाह ने इब्राहिम को सिले दिए हिजरतों के, और फिर उसी से आगे नबुवत का सिलसिला बनी इसराइल में चला। इस्माइल में चूंकि हिल्म ज्यादा था ना, तो इनकी औलाद में आखिर में आकर हजरत मोहम्मद सल्लम की बेसत हुई। कैसे अल्लाह ने नबुवत की कड़ियां जोड़ दी। अब जरा इस बेटे की कहानियां तो सुनिए। फलम्मा बलगा मा खुस्सा, फिर जब वो पहुंचा इसके साथ भाग दौड़ की उम्र करने, यानी भाग दौड़ करने की उम्र को, बच्चे जब बोलते हैं चलते हैं 7-8 साल, यानी जब बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं बाप के साथ, जिधर बाप जाता है वो भी जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहु का, उसने कहा मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें जिबा कर रहा हूँ। इन्नी अरा, और अरा फेल मुजारे है जिसमें कंटिन्यूटी के मानी आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं उर्दू में माजी इस्तमरारी होता है ना, या मुजारे इस्तमरारी, वही है। यानी बार बार मुझे ये ख्वाब दिख रहा है, और रिवायत में आता है कि इब्राहिम को 3 रात तक ये ख्वाब आता रहा। फंजुर माजा तरा, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। यहाँ भी इब्राहिम का एक बड़े खूबसूरत बाप होने के नाते तसव्वुर है। एक बुक है डॉक्टर फजल अली साहब की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहसियत बाप, मीडियम साइज की बुक है, आप अपने मुताले में रखें, खुद पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। उसमें उन्होंने हजरत इब्राहिम की सारी वो बातें जो बच्चों की तरबियत के नाते थी उसको जमा किया हुआ है, तो उसमें भी इसका जिक्र है। बच्चे को खुद नेकी में शामिल कर रहे हैं। एक क्या था, ख्वाब आता अगले दिन बच्चे को लेके कहते चल भी तुझे जिबा करने जा रहा हूं। मुफस्सरीन कहते कि बेटे को ये क्यों कहा कि फंजुर माजा तरा, इसलिए कि उसका भी अजर शामिल हो जाए। देखिए ना, बेटे को अगर बाप जबरदस्ती जिबा करने ले जाता तो बाप को तो अजर मिल जाता, बेटे को तो ना मिलता। फंजुर माजा तरा कहकर उन्होंने बेटे को नेकी में डाला। अक्लमंद माँ बाप नेकियों के कामों में औलाद से मशवरा करते हैं, साथ लेकर चलते हैं, फोर्स नहीं करते। और दूसरी बात आप देखिए कि उनको यकीन था कि ये बेटा मेरे बस में है, क्योंकि हिल्म वाला था ना। खैर, बेटे का जवाब सुनिए, इस पे बात तो बाद में करेंगे, पहले जरा इसके लफ्जों का हुसन तो देखिए। इमेजिन करें, 7-8 का खूबसूरत सा बच्चा है और बाप ख्वाब में देख रहा है। यहां नोट कीजिएगा, ख्वाब में ये नहीं कहा गया क्या इब्राहिम बेटे को जिबा कर दो, पहले अमर नहीं था, हम कहते अब तो मजबूरी हो गई, अब तो हुक्म है। हुक्म कोई नहीं, इशारा दिखाया था अल्लाह ने ख्वाब में, और नबियों के ख्वाब हुज्जत होते हैं, नबी अल्लाह के इशारे समझ जाते थे। आज हम उसके वाज़े हुक्म नहीं समझते, हम कहते हैं देखेंगे, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, ऐसे ही ऐसे ही, ये अल्लाह बहुत नरम है, ये मौलवी बड़े सख्त हैं, हमारे उस्ताद तो बहुत ही सख्त हैं। ये हालात होते हैं ना, तो फिर ये हालात नहीं बनते जो इस तरह दिखे। बेटे का जवाब सुनिएगा। काला, कहने लगे, या बती, ए मेरे प्यारे अब्बा जी। ता किस चीज़ की है? शफकत की, मोहब्बत की, वही जो सूरत यूसुफ में बात की थी। या बते फल मातूमर, ए अब्बा कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। ये है वो जवाब जो हजरत इस्माइल के हिल्म की अक्कासी करता है। आप किसी तबीयत की वजह से अल्लाह ताला ने आपको हलीम का खिताब दिया। आपको पता था कि मेरे बाप नबी हैं, इनका ख्वाब किसी शैतानी वसवसे का कोई नतीजा तो नहीं, वही का हिस्सा है, इसलिए आपने ये नहीं कहा कि ये तो ख्वाब है और ख्वाब का क्या कहना, सोच लीजिए कोई कदम उठाने से पहले। और आप जरा सोचे, बुढ़ापा और बुढ़ापे की दुआओं का नतीजा, बेटा कोई ये नहीं 8-10 बच्चे थे और पैदा हो रहे हैं, हो जाएंगे, हालांकि वो भी मुश्किल है, माँ बाप के लिए तो हर बच्चा प्यारा है। एक अकलौता आपकी उम्मीदों का सहारा, बुढ़ापे का सहारा, लेकिन देखिए कैसे बाप बेटे की बातें हैं, बगैर तरद्दुद के, हीलो हुज्जत के, अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करते हुए। अब्बा जी कर लीजिए जो आपको करना है, बाप का तो पता ही था कि वो तो कर ही लेंगे ये काम। एक अंदेशा बाप के दिल में आ सकता है कि मैं तो बेटे की गर्दन पे छुरी चला दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही पिछली जिंदगी में अल्लाह ताला की बड़ी मदद देखी है, वो तो आग से बचा के ले आया मुझे। बेटे का क्या बनेगा, सोचिए ना, मारने वाला और मरने वाला दोनों तैयार होंगे तो मारेंगे ना। बाद कसाब जो होता है वो तैयार है मारने को, लेकिन जानवर भाग जाता है आगे से। तो बेटे ने बाप की ये परेशानी भांप ली, फौरन कहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। कैसा सबर, किसने सिखाया? यहां वो पोएम है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये मकतब की करामत थी या किसी माँ की तरबियत का नतीजा था। और यहाँ ये एक बात नोट कर लीजिएगा, इस्माइल की इतनी खूबसूरत तरबियत किसने की? इब्राहिम तो पास ही नहीं थे, वो तो छोड़ के आ गए थे बचपन में और कभी कभी मिलने आते थे। ये माँ थी, ये मिसाली माँ थी। ये जो नेक माँ की मिसाली सीरीज है उसमें पहला वाकई उम्मे इस्माइल का है। जब माएँ ऐसी होती है ना अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाली, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, यहाँ से नोट कीजिए कि ये है वो नुक्ता जिसके लिए इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का लकब दिया जाता है। लेकिन यहूद ने इसके लिए, उन्होंने तौरात में कई जगह तहरीफ की है, नाम बदल दिए। बस आप देखिए कि जो रिवायात में आता है कि ये सारा वाक्या जो बाप बेटे का हुआ था, ये मरवा पहाड़ है ना जो, यानी मक्का में हुआ था, आप ये कह लीजिए मरवा की कुर्बानगाह में हुआ था। उन्होंने अपनी किताबों में लफ्ज़ मरवा को फलस्तीन की जगह मूरिया से बदल दिया। और वहां एक और वादी है, यहां चूंकि मक्का का लफ्ज़ है तो उन्होंने वहां की एक वादी मुका उसके नाम से बदल दिया। कहते हैं ये वाकया फलस्तीन में हुआ था और वहां मूरिया नाम की जगह पे हुआ था और वादी मुका में हुआ था, ताकि ये वाकया हजरत इस्माइल की बजाय हजरत इसहाक के साथ जोड़ दिया जाए। नस्बतें देने को तो लोग पसंद करते हैं ना, और कई लोग इसी में आ गए। आज मुसलमानों में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक ज़बीहुल्लाह थे। हालांकि आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत से क्या पता चलता है कि मैं दो ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ। कैसे? एक तो इस्माइल, दूसरे कौन थे? सुना हुआ वाक्या? नहीं सुना हुआ? आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्ला, उनके साथ भी एक वाक्या हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, उन्होंने एक मन्नत मानी कि अल्लाह तू मुझे 10 बेटे दे तो मैं सबसे छोटे बेटे को या आखिरी बेटे को ज़िबा कर दूंगा। एक मन्नत थी, अल्लाह ने उनको बेटे दिए। और अब ज़िबा किसको होना है? अब्दुल्ला को। अब करें कैसे, प्यार इतना आ रहा है, सोच में पड़ गए क्या करूं। इशारा किया, जो उस दौर में वो काहिनों को बुलाते थे, किसी ने मशवरा दिया तुम ऐसा करो कि तीर अंदाजी कर लो, इस बेटे की जगह 10 ऊंट रख लो, तीर किस्मत के पूछ लो कि इस बेटे को मारूं कि 10 तीरों। तो जब तक फैसला ना हो जाए किसका नाम हो, किस्सा मुख्तसर लंबी बात है, खुलासा ये, हर दफा 10 10 करके तीर बढ़ते गए, 100 तीरों के ऊपर जाके फैसला पूरा हुआ। और उनके बाप अब्दुल्ला के बजाय फिर 100 जानवर जिबा किए गए, तो वो एक किस्म की, उस दिन से फिर अरबों में दियत 100 ऊंटों की थी, जो इस्लाम ने भी कायम रखी, उसमें कोई बुराई नहीं, आज भी 100 ऊंटों की कीमत है। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहाँ से बचाया? रकीक बात मेरे दिल में आया जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर उस दिन इस्माइल ज़िबा हो जाते तो अल्लाह के नबी आते? उन्हीं की नस्ल से थे ना। और अगर अब्दुल्ला ज़िबा कर दिए जाते तो अल्लाह के नबी आते? अल्लाह है ये, कैसे बचाता है। मुझे याद आ रहा है कि मूसा को फिरौन के घर में बार बार मौत के मुंह से बचा के अल्लाह ने पलवा दिया, तो अल्लाह तो नहीं डरता, अनहोनी को होनी कर देता है। ये कुदरत है आपके रब की, जिसके होते हुए हम उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, घबराते रहते हैं। खैर, अगला सीन देखिएगा अब। फलम्मा असलमा, फिर जब वो दोनों मुस्लिम हो गए, अगर असलमा कह दूंगी ना तो एक मुसलमान हो रहा है, एक झुक रहा है। असलमा मीम के आगे अलिफ जो है ये क्या है? तस्निया की है। जब बाप बेटा दोनों झुक गए, फरमाबरदारी की, मुस्लिम हो गए, एक काटने पे तैयार है तो दूसरा कटने पे तैयार है। वतल्लहू लिल जबीन, और उसने लिटा दिया उसको पेशानी के बल। हु कौन है इधर? तल्लहू हु कौन है? इस्माइल। करने वाला अमल कौन है? इब्राहिम। बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया क्यों? कहते हैं कि ये मशवरा भी बेटे ने ही दिया था कि अब्बा कहीं मेरी शक्ल देखकर आपको प्यार ना आ जाए, पीछे से चला दें, बस गुद्दी पे छुरी चला दें ताकि जज्बे इतने ना कटें। अब वो तो चला चुके ना, अब इमेजिन कीजिए, तल्लहू करके चला दिया। उस वक्त कोई पता था कि ये कोई ड्रामा है ना, उस बेला ये कोई कहानी पर, वो तो कर चुके, छुरी चल गई थी आपको पता उनके हाथ से। लेकिन वना दई ना हुई या इब्राहिम, और हमने इसे पुकारा, इब्राहिम कद सद्दकत रुया, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। कब किया भी बेटा, तो ज़िबा नहीं हुआ, इरादा कर लिया तो हो गया, नीयत से अमल शुरू हो जाता है, अजर शुरू हो जाता है। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह बदला देते हैं मुहसिनीन को। मुहसिन बने थे तभी अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाला था। हाँ, लेकिन इन्ना हाज़ लहु वल बलाउल मुबीन, यकीनन ये आजमाइश तो बहुत बड़ी थी। जरा नोट करें, इम्तिहान लेने वाला कह रहा हो ना कि इम्तिहान है बड़ा सख्त आज आपका, पेपर बहुत मुश्किल बना है, तो इससे क्या मुराद होती है? कि वो आपकी तारीफ कर रहा है कि शाबाश काबिले तारीफ है आप कि आपने इतना मुश्किल पेपर्स हल कर दिया। अल्लाह अकबर, बड़ा सख्त इम्तिहान है इब्राहिम। वफदैनाहु बिज़िबह नज़ीम, और हमने एक ज़िबह अजीम इसका फ़िदिया दिया। अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक मेंढा शीप लाया गया और इस्माइल की जगह ज़िबह हो गया, और उसी की कुर्बानी हम ईद उल अज़हा के मौके पे हर साल देते हैं। और व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इसी के तरीके पर हमने बाकी रखा बाद में आने वालों में से भी कुछ लोगों को। मुराद क्या? मिल्लत इब्राहिमी। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं आयत 78 में हज़रत नूह के बारे में कहा गया कि इनकी मिल्लत पर कुछ लोगों को रखा जिसमें इब्राहिम भी थे, और इशारा इसमें कुर्बानी की सुन्नत की तरफ भी है कि ये कुर्बानी करने का तरीका हमने उम्मते मोहम्मदिया में रख दिया। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह बदला देते हैं मुहसिनीन को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। इब्राहिम को इतनी सलामियाँ, इतने सल्यूट दिए जा रहे हैं, कुर्बानियाँ भी तो इतनी है ना, कभी मोहसिन कहा जा रहा है कभी मोमिन कहा जा रहा है। एक बेटे को ज़िबा करने को तैयार हुए, कुर्बानी की ना। वबशरनाहु बिइसहाक नबिय्यन मिनस सालिहीन, हमने बिशारत दे दी एक और बेटे की जो नबी सालेह होगा। कितनी वाज़े आयत है इस बात की कि ज़बीहुल्लाह इसहाक नहीं थे, इस्माइल थे, क्योंकि उनके बाद अल्लाह ने बेटे की खुशखबरी दी। मुझे यहाँ याद आ रही है उम्मे सुलैम, जिन्होंने अपने बेटे की मौत को छुपाए रखा और शौहर को खुश किया, तो अल्लाह ने कहा कि आज की रात तुम्हें एक और बेटे की खुशखबरी मिल गई है। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, वो नबी हों या नेक लोग हों। एक बेटा ज़िबा करना चाहा अल्लाह ने, उसकी बदले में इसहाक, और इसहाक से आगे याकूब, और याकूब से 12 बेटे और पूरी बनी इसराइल पैदा कर दी। आप कहते हैं आप अपने काम करेंगे, आई नो बेटर देन वाला। अल्लाह कहते तुम एक देखे तो देखो मुझे, तुम एक चीज मुझे दोगे ना मैं तुम्हें अनगिनत दूंगा, तुम गिन ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां से मिल गया। शर्त एक है कि नजरें अल्लाह पे हो। आप कह सकते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी का जो इम्तिहान अल्लाह ने लिया, उसमें कामयाबी के इनाम के तौर पर आपको दूसरे बेटे इसहाक की विलादत की खुशखबरी मिली। वबारकना अलैहि वाला इसहाक, और हमने बरकत नाजिल कर दी उस पर भी और इसहाक पर भी, लेकिन सारे इसहाक के बाद अच्छे नहीं रहे। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और इन दोनों की औलाद में से कुछ नेकोकार भी थे और अपनी जानों पर कुछ जुल्म करने वाले भी थे। यानी बाद में आगे कहानी बदल गई, वो तो अच्छे दर्जों पे थे पहुंच गए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो ये थी हजरत इब्राहिम की कहानी, सच्ची कहानी है, फिक्शन नहीं है, ड्रामा नहीं है, फिल्म नहीं है, इसमें कोई चुटकुले नहीं है। लेकिन जब पढ़ें एवर न्यू, जब पढ़ें एवर न्यू। एक तो लफ्ज़ मुश्किल थे, मैंने बीच में जान के नहीं दिए ताकि आपको फिर वो कहानी का लुत्फ़ आए, नोट कर लीजिएगा। आयत नंबर 93 में हमने पढ़ा था फराग अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, और इसी तरह 91 में भी पढ़ा था। तो ये जो लफ्ज़ है ना फराग, राग से है, रा अलिफ गैन, इसका मानी क्या होता है? माला जहबा अकबला, सब एक ही मानी है, मतलब क्या है? उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। इसी से लफ्ज़ रगबत भी लग रहा है, और दर्बम बिल यमीन से मुराद है इनको जोर से मार मार कर तोड़ डाला। और यज़िफ़ून का मैंने पीछे बता दिया था, युसरीऊन के मानों में दौड़ते हुए आए, यानी किसी चीज की तरफ जज्बात के साथ भागना और दौड़ना। ये जब हमने पढ़ा है ना तल्लाहु लिल जबीन, इसको भी नोट कर लीजिए। जबीन क्या? आप देखिए कि इंसान को जो चेहरा होता है ना, इस पर दो जबीनें होती हैं, एक दाई तरफ और एक बाई, और ये जो बीच में पेशानी होती है ना, इसको जबह कहते हैं, जबहतन। तो लिल जबीन से पता चलता है कि उस बच्चे को करवट के बल लेटाया था, यानी बिल्कुल ओट करके, उल्टा नहीं लेटाया था। हदीस में भी आता है कि बिल्कुल उल्टा लेटना जहन्नमियों का लेटना होता है, ठीक है? तो पेशानी या मुंह के बल का मतलब क्या है कि उनको किबला रुख करके करवट देती थी। सिर्फ लफ्ज जबीन से ये बात समझ आती है, अगर बिल्कुल चत करके उल्टा लिटा दिया जाता तो लिल जब हा आना था हा के लफ्ज के साथ। तो ये थी हजरत इब्राहिम की कहानी।
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين